पाठ 17 अध्याय 20, अध्याय 20 पूरा पढ़े। इस सप्ताह, अगले सप्ताह और संभवतः उसके बाद के कुछ और सप्ताहों के लिए हमारे अध्ययन की विषय वस्तु जटिल है, कभी कभी विवादास्पद भी है और यह कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। लेकिन यदि आप अपने मन को उस पर केंद्रित करने का निश्चय करेंगे जिस पर हम चर्चा करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के माध्यम से आपको सिखाने के लिए कहेंगे, तो मुझे लगता है कि आप यहोवा और उसके लिखित वचन के प्रति और भी अधिक गहरे प्रेम और समझ के साथ बाहर आएंगे। इसलिए मेरे साथ धैर्य रखें, क्योंकि हम विस्तार के उस स्तर पर जा रहे हैं जिसे मैं आम तौर पर बहुत उबाऊ होने के कारण टालने की कोशिश करता हूं, और कुछ ऐसे विषयों को संबोधित करता हूं जो हमारी कुछ पारंपरिक इंजील ईसाई सोच को चुनौती देते हैं। मेरा लक्ष्य आपको विद्वान बाइबिलवाद विवाद कलाकार या चर्च क्रांतिकारी बनाना नहीं है, बल्कि ये केवल आपके सामने प्रस्तुत करना है कि यहोवा ने अपने लिखित वचन में स्पष्ट रूप से और शाब्दिक रूप से क्या प्रकट किया है। लेकिन ऐसा लगता है कि यह संप्रदायों की उलझन में खो गया है, और आपको यह तय करने दें कि आप कैसे प्रतिक्रिया दें। यदि आपकी बाइबल में इस अध्याय की शुरुआत में कोई शीर्षक है तो यह लगभग निश्चित रूप से 10 आज्ञाय कहेगा, और वास्तव में निर्गमन अध्याय 20 की ये पदें उस पंथ का स्रोत हैं जिसे ईसाई सदियों से उस पंथ के रूप में मानते आए हैं जो नैतिक और धार्मिक जीवन का आधार है। यहूदी धर्म और ईसाई धर्म दोनों में 10 आज्ञाएं को विद्वानों और धार्मिक हलकों में ईसा मसीह के प्रधान आदेश के रूप में भी जाना जाता है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं उत्सुक हूं यहां कितने लोग कहेंगे कि वे वास्तव में मानते हैं कि 10 आज्ञाएं वास्तविक, वैध और वास्तव में परमेश्वर का अपने लोगों के लिए वचन है। ठीक है, हम चर्च मसीह के शरीर को इनमें से कितनी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए? क्या 10 आज्ञाएं एक सूची हैं जिनमें से हम चुन सकते हैं? कुछ चुन सकते हैं जो हमें पसंद है, कुछ को अनदेखा कर सकते हैं जो हमें पसंद नहीं है। ठीक है, तो सामान्य तौर पर यहां अधिकांश लोग इस बात पर आश्वस्त हैं कि हमें सभी 10 आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, है ना? ठीक है, बस जानना चाहता था। हमारी प्रिय 10 आज्ञाएं व्यवस्था देने की शुरुआत है, जैसा कि इसे अक्सर यहूदी और ईसाई दोनों ही समुदायों में कहा जाता है। 10 आज्ञाओं, जो पहले 10 कानून हैं, को दी जाने के तुरंत बाद और अधिक व्यवस्था दी जाती है, और कुल मिलाकर इसे मूसा की वाचा या मोजैक वाचा या सिनाइटिक वाचा या जैसा कि चर्च आमतौर पर इसे समझता है, पुरानी वाचा कहा जाता है। मूसा की वाचा दूसरी बड़ी वाचा होगी जो परमेश्वर ने लोगों के एक विशिष्ट समूह इब्रानियों के साथ की है। पहली वाचा अब्राहम के साथ थी। अब निश्चित रूप से अब्राहम से पहले परमेश्वर द्वारा कुछ घोषणाएं की गई थीं। अदन के बगीचे में आदम और हव्वा को और नूह को महान जल प्रलय और परमेश्वर के वादे के बारे में कि वह फिर कभी जल प्रलय से दुनिया को नष्ट नहीं करेगा, और कुछ शिक्षक और विद्वान उन दो घोषणाओं का उल्लेख करेंगे कभी कभी वाचाओं के रूप में। हमें इस पर किसी धार्मिक बहस में पड़ने की जरूरत नहीं है। इस कक्षा के उद्देश्यों के लिए हम केवल 3 बाइबल वाचाओं को वाचाओं के रूप में लेबल करेंगे, अब्राहम, मूसा और मसीह की वाचाएं। कुछ मुख्य बिंदु हमारे पाठ के लिए मंच तैयार करेंगे। पहला, मूसा की वाचा को पुरानी वाचा कहना दुर्भाग्यपूर्ण रूप से गलत है, क्योंकि इससे यह चित्र बनता है कि बाइबल में यहोवा की 2 वाचाएं हैं, पुरानी और नई, और इसी सोच से हम अपनी बाइबल के 2 हिस्सों, पुराने नियम और नए नियम को लेबल देते हैं। बेशक यह अब्राहम की सबसे महत्वपूर्ण वाचा को छोड़ देता है जो मूसा की वाचा से 6 शताब्दी पुरानी है। दूसरा, इन 3 वाचाओं में से प्रत्येक को अपनी योग्यता के आधार पर अलग अलग खड़ा किया गया है, जबकि साथ ही वे जैविक रूप से जुड़ी हुई हैं, यानी वे सभी यहोवा के दिव्य उद्देश्यों के लिए मिलकर काम करती हैं। और तीसरा, इन 3 ब्रिट वाचाओं के लिए इब्रानी सभी का एक समान रूप है। हमने कुछ महीने पहले बाइबिल की वाचाओं की प्रकृति और रूप के बारे में विस्तार से बात की थी, और समय मुझे इस पर फिर से चर्चा करने की अनुमति नहीं देता है। तथापि
मैं ये बताना चाहता हूं कि तीनों वाचाओं में एक मुख्य तत्व यह है कि प्रत्येक वाचा में परमेश्वर द्वारा एक चिन्ह दिया गया था जो उन लोगों को दिया गया था जो वाचाओं में भाग लेते थे। अब्राहमिक वाचा का संकेत पुरुष खतना था। उस वाचा का हिस्सा बनने की उम्मीद करने वाले किसी भी व्यक्ति को परमेश्वर द्वारा शर्तों को स्वीकार करने के बाहरी संकेत के रूप में खतना करवाना आवश्यक था। मूसा की वाचा का संकेत, जैसा कि हम जल्द ही पवित्र शास्त्र में देखेंगे, सप्त सप्त होगा, अर्थात सप्त का पालन उन सभी लोगों के लिए आंशिक रूप से आंतरिक और आंशिक रूप से बाहरी संकेत था, जिन्होंने व्यवस्था, 10 आज्ञाओं और अन्य सभी नियमों और नियमों को स्वीकार किया जो परमेश्वर की वाचाओं में से दूसरी थी। यदि आप परमेश्वर के अलग और विशिष्ट लोगों, इसराइल का हिस्सा बनने की उम्मीद करते हैं, तो सप्त का पालन आपके जीवन पर यहोवा के आधिपत्य को स्वीकार करने के संकेत के रूप में अनिवार्य था। वाचाओं में से तीसरी और सबसे नई वाचा यीशु मसीह की वाचा है। इस वाचा का संकेत पवित्र आत्मा है, अर्थात यह एक ऐसी वाचा है जिसका चिन्ह बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक है। उस व्यक्ति में जो यीशु मसीह की वाचा की शर्तों को स्वीकार करता है और उसमें भाग लेना चाहता है। मैं इसे दूसरे तरीके से कहता हूं, आपके उद्धार का चिन्ह यह है कि आप पवित्र आत्मा के माध्यम से यीशु मसीह के साथ एकता में हैं, जिसे परमेश्वर ने आपके अंदर रखा है। अपने आप में यह उतना ही बाहरी रूप से अदृश्य है जितना कि यहोवा। एक दिलचस्प प्रगति पर ध्यान दें, पहली वाचा का चिन्ह शरीर में है, अर्थात खतना।
ये एक संकेत है जिसे आप अपने शरीर पर धारण करते हैं। दूसरी वाचा का संकेत आत्मा में है, जिसमें मन और इच्छा शामिल है, सप्त के पालन के लिए व्यक्ति की निरंतर आज्ञाकारिता के रूप में। ये एक संकेत है कि आप करते हैं। तीसरी वाचा का संकेत आत्मा में है, परमेश्वर हमारी मानवीय आत्मा के भीतर या उसके साथ अपनी पवित्र आत्मा को रखता है। ये एक संकेत है कि आप बन जाते हैं, और यह है आप एक नई रचना बन जाते हैं।
हम अध्याय 20 को बहुत सावधानी से देखेंगे, क्योंकि आधुनिक चर्च के सामने आज सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से सबसे कठिन चुनौतियों में से एक है, सदियों से चली आ रही मनुष्य द्वारा निर्धारित शिक्षा को परमेश्वर द्वारा दी गई पवित्र शास्त्रीय सच्चाई से अलग करना। एक शब्द या वाक्यांश का महत्वहीन मोड़ समय के साथ गंभीर त्रुटि की ओर ले जा सकता है।
एंग्लिकन चर्च की स्थापना और फिर प्रोटेस्टेंट सुधार, जो प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के लगभग समान ही हुआ, के कारण पहली बार आस्थावान लोगों को पवित्र शास्त्र तक पहुंच मिली। ये घटनाएं चर्च के जीवन ऐतिहासिक क्षण थे। आज हम चर्च के भीतर व्यापक बदलावों के दौर में रह रहे हैं, जिसका मुख्य कारण इब्रानी और ईसाई धार्मिक संस्थाओं की गहराई में छिपी हुई विद्वत्ता तक पहुंच है। आम लोग अब इब्रानी भाषा की संरचना और प्राचीन इजरायली संस्कृति की बारीकियों के बारे में जानने में सक्षम है। हमारे पास प्राचीन दस्तावेजों जैसे कि नाइसिया की परिषद, थॉमस का सुसमाचार, ओरिजन, यूसीबियस और जेरोम जैसे शुरुआती चर्च के पिताओं के लेखन तक तुरंत पहुंच है। अब इस तरह की जानकारी केवल हमारे धार्मिक सेमिनारियों और निजी पुस्तकालय संग्रहों में ही उपलब्ध नहीं है, और हम जो खोज रहे हैं वह यह है कि कुछ छिपे हुए एजेंडे काम कर रहे थे जो शास्त्रीय व्याख्याओं और शिक्षाओं को प्रभावित कर रहे थे। हमें कुछ चर्च परंपराओं के स्रोत भी मिलते हैं जिन्हें स्पष्ट रूप से हमारे जीवन से हटाने की आवश्यकता है, और उन छिपे हुए और लंबे समय से भूले हुए एजेंडों में से मुख्य और हमारे लिए बहुत शर्म की बात है, यहूदियों के खिलाफ पूर्वाग्रह और मूर्ति पूजक प्रथाओं के साथ यहोवा की शिक्षाओं से समझौता करने की इच्छा थी।
आज के हमारे पाठ के अनुसार कुछ बुनियादी धारणाएं हैं जो हम में से लगभग सभी ने अपने पूरे ईसाई जीवन में, यदि अपने पूरे प्राकृतिक जीवन में नहीं तो 10 आज्ञाओं के बारे में हैं, जो यीशु के साथ मिलकर ईसाई नैतिकता और आचार विचार की नींव बनाती है।
यहोवा ने कहा कि हम अंतिम समय में जो ज्ञान प्राप्त करेंगे उसमें से कुछ ज्ञान से लैस होकर 10 आज्ञाओं के बारे में उन धारणाओं में से कुछ को अधिक सावधानी से जांचने के लिए अब से अधिक उपयुक्त समय नहीं हो सकता है।
आइए अध्याय 20 की पहली पद से शुरू करें, जहां अधिकांश बाइबलों में कहा गया है और या तब परमेश्वर ने ये सब बातें कहीं कह रही थी। मैं जिस शब्द पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं वह उस पद के अंत के पास है और वह शब्द है शब्द। मैं इसके बारे में थोड़ा बात करना चाहता हूं क्योंकि शब्द शब्द वह शब्द है जिसका उपयोग परमेश्वर उस चीज के लिए करता है जिसे चर्च अब 10 अध्याय कहता है। फिर भी आप देखेंगे कि अध्याय 20 में कहीं भी हमने परमेश्वर को मूसा से कही गई बातों को 10 अध्याय शीर्षक देते नहीं देखा। चूंकि यहां 10 आज्ञाएं शीर्षक नहीं दिखाई देता है तो क्या यह इसे शाब्दिक शास्त्रीय व्याख्या के बजाय एक सिद्धांत बनाता है, यानी जैसे कि अनंत सुरक्षा या रैप्चर या ट्रिनिटी, जो सभी सिद्धांत शीर्षक और नाम हैं जो वास्तव में शास्त्र में नहीं दिखाई देते बल्कि शास्त्रों में निहित विचारों से प्राप्त होते हैं। क्या 10 आज्ञाएं केवल एक सिद्धांत के लिए एक मानव निर्मित नाम है, या बल्कि क्या 10 अध्यायें शीर्षक सचमुच बाइबल में कहीं उस नाम के तहत दिखाई देता है? अंतिम प्रश्न का उत्तर एक योग्य नहीं है और हम बस एक मिनट में इस पर अधिक बारीकी से नजर डालेंगे। उससे पहले आइए मूल इब्रानी में देखें कि निर्गमन 20 का एक में शब्द शब्द का क्या अर्थ है, क्योंकि शब्द वह है जिसे परमेश्वर पारंपरिक रूप से आज्ञाएं कहते हैं। औपचारिक शैक्षणिक नाम डेकालॉग ग्रीक में 10 शब्दों के लिए है, न कि 10 आज्ञाओं के लिए। इब्रानी में जिसे हम शब्द के रूप में अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं वह दबर है। दबर का अर्थ है भाषण, इसका अर्थ है श्रव्य भाषण के माध्यम से एक विचार का संचार करना। दबर एक उच्चारण है, स्वर रज्जु की एक हरकत या एक शब्द, जैसा कि हम शब्द शब्द के बारे में सोचते हैं, जैसा कि मौखिक संचार में उपयोग किया जाता है, एक भाषा बोलना। हालांकि इस शब्द के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाता हो कि यह एक आदेश है, बल्कि दबर तटस्थ है, अर्थात यह शब्दों की सामग्री की विशेषता नहीं बताता है। शब्द किसी भी चीज के बारे में हो सकते हैं। तो अध्याय 20 की इस पहली पद में हमें जो बताया जा रहा है वह यह है कि मूसा ने डेकालॉग दैवीय प्रेरणा के माध्यम से 10 वचन प्राप्त नहीं करे, बल्कि परमेश्वर ने वास्तव में ये सभी शब्द सुने हुए तरीके से बोले ताकि मानव कान इसे सुन सके। परमेश्वर ने ये शब्द प्रेरणा के माध्यम से नहीं बल्कि दैवीय प्रेरणा के माध्यम से दिए। पवित्र शास्त्र का अधिकांश भाग वास्तव में दैवीय प्रेरणा के माध्यम से पूरा किया गया है, अर्थात पवित्र आत्मा ने एक व्यक्ति को अलौकिक रूप से किसी तरह उस व्यक्ति के अपने मन के साथ मिलकर वह लिखने के लिए प्रेरित किया जो सत्य और निरपेक्ष और दिव्य है, और जो यहोवा ने समझा कि वह चाहता था कि लोग उसके और उसकी योजनाओं और उसकी रचना के बारे में जाने। हालांकि यहां निर्गमन 20 में यह एक व्यक्ति पर दैवीय प्रेरणा नहीं थी जिसे दर्ज किया गया था, बल्कि यह परमेश्वर था जो मूसा और इसराइल से श्रव्य आवाज में बोल रहा था, जो कि दैवीय शब्द का अर्थ है, और शास्त्र में जो लिखा गया है उसे वास्तविक शब्द कहा जाता है जो परमेश्वर ने बोले थे और इसराइल के लोगों ने उस दिन सुना था। यहोवा चाहता था कि यह तथ्य हमेशा के लिए इतना स्पष्ट हो जाए कि न केवल परमेश्वर ने स्वयं इन शब्दों को स्पष्ट रूप से कहा बल्कि बाद में अपनी स्वयं की उंगली लाक्षणिक रूप से उसने उन्हीं शब्दों को पत्थर की पट्टियों पर भी उकेरा ताकि वे मानव जाति के इतिहास में सुरक्षित रहे। किसी भी स्तर पर मनुष्य का इससे कोई लेना देना नहीं था, और फिर से यह अधिकांश बाइबल शास्त्रों से बिल्कुल अलग है जिसमें परमेश्वर और मनुष्य के बीच एक अजीबोगरीब सहयोग शामिल है। अब कुछ प्राचीन यहूदी संत, कुछ हद तक मैंने अभी जो कुछ आपको बताया है उसके बारे में यहोवे द्वारा ये शब्द बोलने के बारे में बहस करेंगे। एक छोटा सा अल्पसंख्यक कहेगा कि केवल पहली और दूसरी आज्ञाएं ही यहोवा द्वारा मूसा और इसराइल को सीधे कही गई थीं और बाकी उसने सिर्फ पत्थर की पट्टियों पर लिखी थीं। उनका तर्क यह है कि पहली दो आज्ञाओं में परमेश्वर ने पहले व्यक्ति में खुद के बारे में बात की थी और बाकी आठ में उसने ऐसा नहीं किया। इसलिए वे कहते हैं कि यहोवा ने केवल पहली दो आज्ञाएं ही सुनाई और उसके आगे कुछ नहीं। शास्त्र में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह संकेत दे कि वास्तव में शास्त्र संकेत देता है कि सभी दस आज्ञाएं जोर से बोली गई थीं और प्राचीन और आधुनिक इब्रानी विद्वानों का विशाल हिस्सा इस पर मेरी स्थिति से सहमत होगा।
व्यवस्था विवरण 5:22 पढ़ें। इससे यह बात पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है कि यहोवा ने 10 वचन इसलिए बोले ताकि सारा इसराइल उन्हें सुन सके और व्यवस्था का शेष भाग उसने मूसा को दिया, परंतु दूसरों को सुनाने के लिए उसे जोर से नहीं कहा। अब चर्च द्वारा परंपरागत रूप से दिए जाने वाले शीर्षक के बारे में, जो पद एक के बाद आता है, 10 अध्याय बाद में निर्गमन 34:28 में इसराइल को दिए गए परमेश्वर के इस भाषण निर्गमन 20 के पद 2-17 को औपचारिक शीर्षक दिया गया, और यह औपचारिक शीर्षक इब्रानी में एसेर दबर है। वास्तव में एसेर एक सामान्य इब्रानी शब्द है जिसका उपयोग गिनती 10 के लिए किया जाता है, लेकिन हमने अभी क्या सीखा कि दबर का क्या मतलब है?
याद रखें, निर्गमन 20 की पहली पद में लिखा है और परमेश्वर ने यह सब दबर शब्द कहे। दबर का अर्थ है शब्द या शब्द, एक कथन, भाषण। यही है जहां हमारे अधिकांश बाइबलों में निर्गमन 34:28 10 आज्ञाएं कहता है। वहीं सही अनुवाद जो निर्गमन 20 से सहमत है 10 शब्द है। इसलिए बाइबल के विद्वान जिस अधिक सही यूनानी अनुवाद का उपयोग करते हैं वह है डेकालॉग डेका, 10 लॉग शब्द।
अब आप कह सकते हैं, क्या यह थोड़ा सा अतिशयोक्तिपूर्ण या अति तकनीकी नहीं है, क्योंकि इसके बाद निश्चित रूप से परमेश्वर के 10 निर्देश, 10 आज्ञाएं हैं जिनका हमें पालन करना है। इसलिए हम इसे जो भी नाम देना चाहें, इसमें क्या हानि है? इससे पहले कि मैं उन कारणों पर चर्चा करूं कि क्यों निर्गमन 20 के अधिकांश भाग को 10 आज्ञाएं कहना एक समस्या प्रस्तुत करता है, आपको यह जानना आवश्यक है कि निर्गमन 34:28 के बाद बाइबिल में केवल दो अन्य स्थान हैं जहां शीर्षक 10 आज्ञाएं का प्रयोग किया गया है, और वह हैं व्यवस्था विवरण 4:13-10:41। और सभी मामलों में वह वाक्यांश जिसका अनुवाद लगभग सार्वभौमिक रूप से हमारी बाइबिलों में 10 आज्ञाएं के रूप में किया गया है, वास्तव में इब्रानी में एसेर दबर है शाब्दिक रूप से 10 शब्द। आपको यह दिखाने के लिए कि दबर शब्द, जिसका मतलब सिर्फ शब्द या शब्द है, को गलत तरीके से कमांड या आज्ञाओं में बदलने से क्या समस्या है, मुझे पहले एक और मुद्दे पर बात करनी होगी, और वह है 10 आज्ञाओं, या बेहतर कहें तो 10 शब्दों की गिनती। यदि आपके पास नीली बाइबल है जो कि CJB है और आप ऐसे व्यक्ति के बगल में बैठे हैं जिसके पास नहीं है, तो कृपया थोड़ा आगे बढ़ें और उसे बताएं, क्योंकि हम निर्गमन अध्याय 20 पर विचार कर रहे हैं। आप बाएं हाथ के मार्जिन में 10 तथा कथित आज्ञाओं में से प्रत्येक से पहले एक एकल इब्रानी अक्षर देखेंगे। वे वास्तव में गिनतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि इब्रानी लेखन प्रणाली में वर्णमाला के अक्षरों का उपयोग गिनतियों को दर्शाने के लिए भी किया जाता है। पहला इब्रानी अक्षर जो आप देखते हैं वह एक एलेफ है। वर्णमाला का हिस्सा होने के अलावा एलेफ गिनती एक का भी प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा अक्षर जो आप देखते हैं इलेख के नीचे, इब्रानी अक्षर बेट है, जो संख्या 2 का भी प्रतिनिधित्व करता है। और यह पैटर्न तब तक जारी रहता है जब तक हम इब्रानी अक्षर युद्ध तक नहीं पहुंच जाते, जो गिनती 10 का प्रतिनिधित्व करता है। यह समझना बहुत मुश्किल नहीं है। अब समझिए, मूल इब्रानी में ये इब्रानी अंक वास्तव में पाठ मार्जिन में दिखाई देते थे, जैसा कि आप यहां से JB में देख सकते हैं। हमारे पास मौजूद सबसे पुरानी इब्रानी पांडुलिपियों Dead Sea स्क्रॉल सहित में 10 आज्ञाएं या 10 शब्द प्रत्येक को वास्तविक आदेश से पहले एक इब्रानी गिनती दी गई थी। हमारे आधुनिक संस्करणों ने अधिकांश भाग के लिए आदेशों या शब्दों की गिनती को हटाने का फैसला किया है। अब बिना बाइबल देखे क्या कोई याद रख सकता है
कि हम सभी ने कभी ना कभी जो सीखा है वह 10 आज्ञाओं या 10 वचनों में से सबसे पहला वचन है। इसे आमतौर पर इस तरह पढ़ाया जाता है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, मेरे सिवा तुम्हारे कोई अन्य देवता नहीं होने चाहिए। मैंने इसे बस इस तरह पढ़ाते हुए भी देखा है कि मेरे सिवा तुम्हारे कोई अन्य देवता नहीं होने चाहिए। मुझे यकीन है कि यहां कोई भी इससे असहमत नहीं होगा।
खैर, इस पर यकीन करना जितना मुश्किल है, समस्या वहीं से शुरू होती है, क्योंकि अगर आप स्ट्रट बाइबल को देखेंगे तो आप इसे वैसे ही देखेंगे जैसे कि यह मूल इब्रानी में किया गया था। और अंदाजा लगाइए क्या, हम हमेशा से यही सोचते आए हैं कि पहली आज्ञा नहीं है, पहली आज्ञा वास्तव में है, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुम्हें मिस्र देश से दासता के घर से बाहर लाया हूं, मेरे सिवा तुम्हें कोई दूसरा परमेश्वर नहीं मानना चाहिए, दूसरी आज्ञा है।
मूल इब्रानी में भी जो मैं अब आपको दिखा रहा हूं वह पहली आज्ञा है, हमारी बाइबल में यह आम तौर पर पद 2 में निहित है। अधिक सही ढंग से पढ़ा जाता है, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुम्हें मिस्र की भूमि से दासता के निवास से बाहर लाया है। यह सही है, जहां लगभग हर बाइबल में लिखा है मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, मूल इब्रानी का शाब्दिक अनुवाद है मैं तुम्हारा एलोहिम यहोवा हूं। इसमें पाठ में परमेश्वर के व्यक्तिगत नाम और उनके शीर्षक दोनों का उपयोग किया गया है।
कुछ सप्ताह पहले मैंने संक्षेप में इस विसंगति का उल्लेख किया था कि हम जिस पहली आज्ञा को जानते हैं वह नहीं है जिसे हम आम तौर पर पहली आज्ञा के रूप में पढ़ाते हैं, और वास्तव में मूल पहली आज्ञा को 10 आज्ञाओं के ईसाई संस्करण से हटा दिया गया है। यह हमारी बाइबल से हटाई नहीं गई है, इसे केवल 10 आज्ञाओं में से पहली नहीं माना जाता है। और उस कक्षा के बाद कुछ लोग मेरे पास आए और कहा, ठीक है हाँ, लेकिन जिसे आप पहली आज्ञा कहते हैं वह आज्ञा के रूप में भी योग्य नहीं है, क्योंकि यह केवल एक कथन है, एक तरह की प्रस्तावना है, इसलिए यह 10 आज्ञाओं की सूची में नहीं आती है। खैर, यह एक बात को छोड़कर बहुत ही ठोस तर्क है। जैसा कि हमने अभी सीखा, परमेश्वर कभी भी निर्गमन 20 की सामग्री को 10 अध्याय नहीं कहता है। इसके बजाय इसके लिए उसका शीर्षक 10 शब्द है। शब्दों और आज्ञाओं के बीच बहुत बड़ा अंतर है, इसलिए 10 आज्ञाओं का मानव निर्मित शीर्षक वास्तव में 10 शब्दों की प्रकृति और उद्देश्य को गलत तरीके से दर्शाता है। वास्तव में ये आज्ञाओं से ज्यादा सिद्धांत है। कृपया समझें कि हमें मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुम्हें मिस्र देश से गुलामी के घर से निकाल लाया हूं को तथाकथित आज्ञा के रूप में शामिल करने का कारण यह है कि यह हमेशा मूल पवित्र शास्त्र में 10 में से पहली आज्ञा के रूप में मौजूद रहा है। इसे मूल इब्रानी में भी नंबर 1 दिया गया है। सभी आधुनिक इब्रानी विद्वान इस पर एकमत हैं।
फिर भी मुझे स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि बेबीलोन में यहूदियों के निर्वासन के बाद एक समय ऐसा भी था जब 10 आज्ञाओं की सूची में वास्तव में बाइबल की पहली आज्ञा को हटा दिया गया था, और इसलिए यह आज की हमारी सूची जैसी दिखती थी। बाद में यीशु से कुछ समय पहले इसे बाइबल की पहली आज्ञा को फिर से शामिल करने के लिए संशोधित किया गया था। बेबीलोन के बाद की इस अवधि में सप्त पालन, अनुष्ठानिक स्नान, 7 बाइबल दावतों का पालन और बहुत कुछ जैसे बाइबल के कई संस्थानों में भ्रष्टाचार और लापरवाही देखी गई। आज पवित्र धर्म ग्रंथ में दी गई 10 आज्ञाओं की बाइबल सूची यहूदी लोग मानते हैं, तथापि ईसाई लोग उस संस्करण का उपयोग करते हैं जो हमारी 10 आज्ञाओं की सूची में से सबसे पहली आज्ञा को हटा देता है, या जैसा कि हम अब इसे कहते हैं, पहला शब्द।
अब एक प्रश्न जो अभी पूछना उचित होगा वह यह है कि प्रारंभिक ईसाई नेताओं द्वारा प्रथम आज्ञा को छोड़ने और फिर बाद के ईसाई नेताओं द्वारा उस प्रथा को जारी रखने के पीछे संभवतः क्या उद्देश्य रहा होगा? क्या इसका कोई अर्थ नहीं है? वास्तव में यह सभी तरह से अर्थपूर्ण है।
आइए एक मिनट के लिए सोचें कि हमने ईसाई धर्म की शुरुआत के बारे में पिछले कई हफ्तों में क्या सीखा है। हम जानते हैं कि यह एक सख्त यहूदी आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था, क्योंकि यह यहूदी धर्म के बारे में था जो यहूदी मसीहा की तलाश कर रहा था, और वास्तव में यहूदी मसीहा आया। वह यहूदी था और है, यहूदी माता पिता से पवित्र भूमि में पैदा हुआ, और उसके सभी पहले अनुयायी यहूदी थे। लेकिन यीशु की मृत्यु के तुरंत बाद गैर यहूदियों को यीशु आंदोलन में शामिल किया जाने लगा, और कुछ और सालों में उनकी गिनती मुख्य रूप से प्रेरित पौलुस के काम के कारण बेरेच गई। फिर भी यीशु की मृत्यु के बाद कई दशकों तक ईसाई आंदोलन का नेतृत्व अभी भी यहूदी नेतृत्व द्वारा किया जाता रहा। 100 ईस्वी के कुछ समय बाद तक ऐसा नहीं हुआ कि यीशु को परमेश्वर और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने वाले गैर यहूदियों की गिनती यीशु को परमेश्वर और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने वाले यहूदियों की गिनती के बराबर या उससे अधिक हो गई। और इसके साथ ही गैर यहूदियों ने शुरुआती चर्च पर नियंत्रण हासिल करना शुरू कर दिया। 100 ईस्वी के दशक के मध्य तक गैर यहूदी लोग चर्च में शक्तिशाली पदों पर थे, और यहूदी विरोधी मानसिकता पैदा हुई, जिसके कारण चर्च के भीतर यहूदी प्रभाव को कम करने का प्रयास किया गया। ईसाई धर्म का पहला केंद्र यरूशलेम था, क्योंकि यरूशलेम यहूदी पूजा का केंद्र था। बाद में ईसाई धर्म का केंद्र रोम बन गया, क्योंकि रोम गैर यहूदी दुनिया का केंद्र था।
300 ईस्वी की शुरुआत में रोम के सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने न केवल ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य के लिए एक वैध धर्म घोषित किया, बल्कि उन्होंने खुद भी इसे पसंद किया। इसके अलावा चर्च को केवल गैर यहूदियों का क्लब बनना था, और यहूदियों को अब कानून के अनुसार इसमें भाग लेने से मना किया गया था, जब तक कि वे अपनी यहूदी विरासत और अपनी यहूदी परंपराओं को त्याग न दें।
ये रोमन चर्च था, जिसे अब कैथोलिक चर्च के रूप में जाना जाता है, जिसने सही तरीके से 10 आज्ञाओं को ईसाई धर्म के संस्थापक स्तंभों में से एक घोषित किया, और 10 आज्ञाओं की अपनी आधिकारिक सूची संकलित करते समय उन्होंने जो किया वह पहली आज्ञा को बाहर करना था। पवित्र शास्त्र में लिखा पहला शब्द और इसके बजाय दूसरी आज्ञा से शुरू करना। उन्होंने वही किया जो यहूदियों ने बेबीलोन के बाद कुछ समय के लिए किया था। उन्होंने बस बाइबिल की दूसरी आज्ञा दूसरा शब्द लिया और इसे दो भागों में विभाजित कर दिया। तो बाइबिल की दूसरी आज्ञा का पहला भाग आज्ञा 1 बन गया, और बाइबिल की दूसरी आज्ञा का दूसरा भाग आज्ञा 2 बन गया। तो पवित्र शास्त्र में जो एक आज्ञा थी वह रातों रात 2 आज्ञाएं बन गई। श्रट पर एक नजर डालें। आपको याद होगा कि हमारी पारंपरिक पहली आज्ञा है मेरे सिवा कोई दूसरा परमेश्वर न रखना, और पारंपरिक दूसरी आज्ञा है कि तुम अपने लिए कोई खुदी हुई मूर्ति न बनाओ।
लेकिन मूल धर्म ग्रंथ में वे दोनों आज्ञाएं वास्तव में एक लंबी आज्ञा है, मूल दूसरी आज्ञा। संक्षेप में, जिसे चर्च ने 10 आज्ञाएं कहा है उसमें केवल 9 आज्ञाएं हैं।
अब रोमन चर्च ने ऐसा क्यों किया? कॉन्स्टेंटाइन के समय तक चर्च यहूदी धर्म और ईसाई धर्म के बीच कोई संबंध नहीं चाहता था। वे यहूदियों और नए गैर यहूदी ईसाई धर्म के बीच किसी भी तरह के संबंध को खत्म करना चाहते थे। वे किसी भी विचार, किसी भी सिद्धांत को नष्ट करना चाहते थे, किसी भी इतिहास को संशोधित करना चाहते थे जो यहूदी धर्म के किसी भी तत्व को उस धर्म में रखता था जो कि एक विशेष रूप से गैर यहूदी धर्म बन गया था। यदि उन्होंने मूल एक आज्ञा, एक शब्द को 10 की सूची में रखा होता तो यह उनके यहूदी विरोधी एजेंडे के लिए एक समस्या पैदा कर देता, क्योंकि वे स्वीकार करते कि परमेश्वर ने ये 10 आज्ञाएं सैकड़ों अन्य आज्ञाओं के साथ इज़राइल को दी थीं, गैर यहूदियों को नहीं, जिन्हें उन्होंने मिस्र के हाथों से छुड़ाया था। और चूंकि आम जनता को पवित्र शास्त्र पढ़ने की तो बात ही छोड़िए, उसे रखने की भी अनुमति मिलने में 1000 साल लग गए, इसलिए चर्च ने जो भी आदेश प्रकाशित किए वे सत्य बन गए। 10 आज्ञाओं में से इज़राइल का कोई भी संदर्भ न देकर इस विचार को पुख्ता करने में मदद मिली कि ईसाई धर्म यहूदियों के लिए नहीं था। तो हमें यह समझाने की जरूरत है, 10 आज्ञाएं शब्द निर्गमन 20 में पाई जाने वाली सूची के लिए एक मानव निर्मित नाम है, और यह उस सूची के बारे में एक दुर्भाग्यपूर्ण गलत चित्रण भी है, और
हमें 10 की हमारी सूची में पहले वचन को वापस रखकर उस सूची को थोड़ा संशोधित करने की आवश्यकता है। हमें यह भी समझने की जरूरत है कि चर्च के भीतर यहूदी विरोधी एजेंडे के कारण, जो कॉन्स्टेंटाइन से बहुत पहले से है, कुछ आलोचनात्मक शास्त्रों का अनुवाद कुछ हद तक पक्षपातपूर्ण तरीके से किया गया है, जैसे कि शब्द के स्थान पर आज्ञा का प्रयोग करना। ओ, निश्चित रूप से आज्ञा के लिए एक इब्रानी शब्द है और आमतौर पर यह मित्क्या शब्द होता है, लेकिन आदेश शब्द मित्क्या का सार पूरी तरह से नहीं दर्शाता है। मित्क्या का सही अर्थ है परमेश्वर द्वारा दिया गया निर्णय। हम इस पर थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे,
जबकि यह अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। मैं आपको यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब हम निर्गमन के अगले अध्याय अध्याय 21 पर पहुंचते हैं तो हम तुरंत एक और वाक्यांश पर पहुंचते हैं जो कि आम तौर पर व्यवस्था कहलाने वाली चीज को समझने के लिए महत्वपूर्ण है, जो कि माउंट सिनाई पर मूसा को दी जाने वाली थी। और यह वाक्यांश, हालांकि जरूरी नहीं कि गलत अनुवाद किया गया हो, आमतौर पर हमें गलत धारणा देता है, खासकर पश्चिमी समाज में, कि तोरह किस बारे में है। इसका परिणाम चर्च द्वारा तोरह, और जिसे आमतौर पर व्यवस्था कहा जाता है, के बारे में आमतौर पर नकारात्मक दृष्टिकोण है। और दुख की बात है कि यह नकारात्मक दृष्टिकोण एक हद तक पूरे पुराने नियम तक भी फैला हुआ है।
इसलिए निर्गमन अध्याय 20 हमें माउंट सिनाई पर मूसा को दिए गए 10 वचनों का रिकॉर्ड देता है। इन 10 वचनों ने मूसा और इसराइल को दिए जाने वाले तथाकथित कानून के लिए मंच तैयार किया। फिर भी इन 10 वचनों को निश्चित रूप से अलग रखा गया और बाकी सभी से ऊपर रखा गया। इसीलिए अगर हमें इन 10 वचनों को 10 आज्ञाओं के रूप में मानने की धारणा पर फिर से विचार करने की जरूरत है, तो हम उन्हें और अधिक उचित रूप से कैसे चित्रित कर सकते हैं?
मेरा सुझाव है कि हम इसके बारे में वैसे ही सोचें जैसे हम अपनी स्वतंत्रता की घायषणा या अपने संविधान के बारे में सोचते हैं। उन दो दस्तावेजों में कई ठोस अपरिवर्तनीय दावे और सिद्धांत शामिल हैं जो हमारे राष्ट्र और उसके बाद आने वाली सरकार की व्यवस्था के लिए रूपरेखा तैयार करते हैं। फिर भी हम में से कोई भी उन दो दस्तावेजों में निहित बातों को आज्ञाएं कहने के बारे में नहीं सोचेगा।
मुझे लगता है कि हमारे अमेरिकी संस्कृति में आम तौर पर दो वाक्यांश उपयोग में हैं, जो मूसा को दिए गए इन 10 वचनों की प्रकृति को बहुत अच्छी तरह से व्यक्त करते हैं और जो आज्ञाओं की तुलना में अधिक करीब हैं, और वे वाक्यांश घोषणाएं और सिद्धांत हैं। अर्थात 10 वचन सभी कानून के लिए संस्थापक सिद्धांत हैं जो आगे आएंगे। 613 कानून पहले 10-10 वचन हैं, 10 वचन जो परमेश्वर इसराइल को देगा। संक्षेप में आप 10 घोषणाओं में निर्धारित सिद्धांतों को कैसे जीते हैं? यह लगभग ऐसा है जैसे कि निम्नलिखित 603 कानून 10 घोषणाओं 10 संस्थापक सिद्धांतों का विस्तार है जो परमेश्वर ने अभी अभी निर्गमन 20 में मूसा को दिए हैं। 613 कानून सभी 10 वचनों की सीमाओं के भीतर काम करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे अमेरिका में हमारे सभी नागरिक और आपराधिक कानूनों को वैध होने के लिए हमारे संविधान में घोषित सिद्धांतों के ढांचे के भीतर काम करना चाहिए। वास्तव में यीशु के दिनों में यह एक आम समझ थी कि न केवल सभी कानून सभी सच्चे तौरह निर्गमन 20 के 10 शब्दों के सिद्धांतों के भीतर काम करते थे, बल्कि 10 शब्द खुद भी एक उच्चतर अधिक बुनियादी सिद्धांत के अधीन काम करते थे। क्या किसी को याद है कि वह उच्चतर सिद्धांत क्या है? अपने परमेश्वर से अपने पूरे दिल दिमाग और ताकत से प्यार करो और अपने पड्डी डी ढौसी से अपने समान प्यार करो। मत्ती 22 का 35 से 40 देखिए, पढ़िए।
इसलिए अपने परमेश्वर से अपने पूरे दिल दिमाग और ताकत से प्यार करो का सिद्धांत 10 शब्दों का आधार बन जाता है और 10 शब्दों के मूल सिद्धांतों से 613 नियम निकलते हैं। यीशु ने खुद इसकी पुष्टि की और वैसे वह सर्वोच्च सिद्धांत अपने परमेश्वर से पूरे दिल से प्रेम करो नए नियम में तैयार किया गया सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह सिर्फ दोहराया गया है। वह हमें सबसे पहले उस रूप में दिया गया था तोरह में, व्यवस्था विवरण 6 से 5 में। वास्तव में नए नियम का आधे से ज्यादा हिस्सा पुराने नियम से उद्धरण मात्र है।
इस पृष्ठभूमि के साथ अगले सप्ताह से हम निर्गमन 20 के 10 शब्दों पर काम करना शुरू करेंगे, जो 10 संस्थापक सिद्धांत हैं, जिनका उपयोग इसके बाद आने वाले सभी 603 नियमों के लिए किया जाएगा।